नमस्कार और इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, महिला जागृति अभियान। ये 1988 से 1990 के बीच लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक हिस्सा है और इसके प्रणेता हैं युग ऋषि वेदोमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें हम सब पूज्य गुरुदेव के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुदेव ने खुद इस साहित्य को अपना ज्ञान शरीर कहा था। उनका मानना था कि यह जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये क्रांतिधर्मी साहित्य, जैसा नाम से ही पता चलता है, विचारों में क्रांति लाने के लिए, समाज को बदलने के उद्देश्य से लिखा गया था। तो चलिए आज नारी चेतना पर पूज्य गुरुदेव के विचारों की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पुस्तक की शुरुआत में नारी की भूमिका को किस तरह से रखा गया है?
जी देखिए, पूज्य गुरुदेव शुरू में ही नारी के परम पूज्य देवी रूप पर बहुत जोर देते हैं। वो केवल स्त्री नहीं बल्कि मातृशक्ति हैं, महिमा शक्ति हैं, षष्ठी का मूल स्रोत। उन्हें विधाता और माता दोनों कहा गया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि देवत्व के प्रतीकों में भी नारी को पहली जगह दी गई है। जैसे हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, सीताराम कहते हैं, नारायण लक्ष्मी या राम सीता नहीं।
अच्छा, यानी सिर्फ एक सामाजिक भूमिका ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक आधार दिया गया है।
हाँ बिल्कुल, उन्हें भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना का प्रतीक माना है। जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती, ऐश्वर्य की लक्ष्मी, शक्ति की काली दुर्गा, ये सब नारी तत्व के ही अलग अलग रूप है। पुस्तक में ये भी कहा गया है कि पुरुष नारी को पाकर ही असल में पूर्ण और समर्थ बनता है।
लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो इस ऊंचे स्थान से काफी गिरावट भी आई। पुस्तक इसके क्या कारण बताती है, ये पतन क्यों हुआ?
युग को जिम्मेदार मानते हैं। उस दौर में नारी को अबला, भोग्या, यहाँ तक कि क्रीत दासी, मतलब खरीदी हुई दासी, ऐसा समझा जाने लगा।
ओहो, क्रीत दासी तक?
जी, उसे अधिकारों से वंचित कर दिया गया, घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। शिक्षा और स्नेह दुलार में भी बेटा बेटी के बीच बहुत भेदभाव होने लगा और ससुराल में तो हालत और भी खराब हो गई। एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया।
हाँ, और वो पतिव्रत का बोझ भी सिर्फ उसी पर डाल दिया गया। पुरुषों के लिए वैसे नियम नहीं थे।
सही कहा, पुरुषों के लिए कोई नैतिक बंधन नहीं रहा। और फिर दहेज जैसी कुप्रथाओं का उत्पीड़न अलग।
और ये सिर्फ नारी के लिए ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे समाज के लिए ही बहुत नुकसान दे रहा होगा।
निश्चित रूप से, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आधी जनशक्ति को पंगु बना देने जैसा था, जिससे समाज की जो तरक्की थी वो रुक गई।
तो इस निराशाजनक स्थिति के बाद क्या पूज्य गुरुदेव किसी बदलाव की आहट भी देख रहे थे, कोई उम्मीद?
हाँ बिल्कुल, और वे इसे एक तूफानी प्रवाह कहते हैं। उनका मानना था कि ये जो असंतुलन है, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, दैवीय विधान के विरुद्ध है और इसे ठीक होना ही है। वो 21वीं सदी को तो बहुत स्पष्ट रूप से नाली सदी कहते हैं।
अच्छा,
नारी सदी।
जी,
एक ऐसा युग जब नारी अपनी खोई हुई गरिमा और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दोबारा हासिल करेगी। इसके लिए वो इतिहास से रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का उदाहरण देते हैं और अपने समय के उदाहरण भी देते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी या केरल में जो स्त्रियां शिक्षा और सामाजिक सुधारों में आगे थीं।
तो ये जो तूफानी प्रवाह या जागरण की बात हो रही है, इसके सामने सबसे बड़ी रुकावट क्या बताई गई है? ये बंधन टूटेंगे कैसे?
देखिए, पुस्तक के अनुसार सबसे बड़ी बाधा बाहरी हालात से भी ज्यादा हमारी अपनी मानसिकता है। वो जो गहरी बैठी हुई मूल मान्यताएं हैं, वो असल दिक्कत है।
जैसे?
किस तरह की मान्यताएं? जैसे माँ बाप का बेटी को पराया धन समझना, या पति का उसे केवल वासना पूर्ति का साधन मानना, या फिर ससुराल वालों का उसे बस एक मुफ्त की सेविका समझना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब तक ये देखने का नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक सच्चा बदलाव मुश्किल है।
इसमें विवाह संस्था के बारे में भी कुछ कहा गया है।
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूज्य गुरुदेव विवाह को केवल एक शारीरिक जरूरत या सामाजिक रस्म नहीं मानते, वो इसे आपसी विकास और प्रगति के लिए एक पवित्र साझेदारी मानते हैं। वो बाल विवाह के तो सख्त खिलाफ थे और इस बात की भी आलोचना करते थे कि शादी के बाद अक्सर नारी की पढ़ाई लिखाई और उसका अपना विकास रुक जाता है।
सही बात है। तो फिर इस जागृति को असलियत बनाने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए, पुस्तक क्या व्यवहारिक कदम सुझाती है?
दो मुख्य कदमों पर बहुत बल दिया गया है। पहला, शिक्षा। शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार हो और सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा जो व्यक्तित्व को निखारे, व्यावहारिक समझ बढ़ाए और ये हर उम्र की नारी तक पहुंचे।
और दूसरा कदम?
दूसरा कदम है आर्थिक स्वावलंबन, मतलब कुटीर उद्योगों या दूसरे तरीकों से स्त्रियां आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हों, ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
शिक्षा और स्वावलंबन, ये तो बाहरी बदलाव की बात हुई, क्या अंदरूनी बदलाव मतलब आंतरिक स्तर पर भी कुछ कहा गया है?
जी बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव संयम पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना था कि अनियंत्रित कामुकता सिर्फ शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि ये समाज की प्रगति में भी रुकावट डालती है। और यहाँ एक खास बात वो कहते हैं कि विशेष रूप से इस युग संधि के समय में।
युग संधि मतलब जब एक युग बदल रहा हो?
हाँ, जब एक पुराना युग खत्म हो रहा हो और नया युग शुरू हो रहा हो, ऐसे समय में अपनी ऊर्जा को व्यक्तिगत भोग विलास में लगाने के बजाय समाज के उत्थान और नव निर्माण में लगाना ज्यादा जरूरी है। इसी संदर्भ में वो कुछ समय के लिए प्रजनन पर भी नियंत्रण रखने का सुझाव देते हैं।
अच्छा।
ताकि शक्ति का संचय समाज के हित के लिए हो सके, ताकि वो ऊर्जा सामूहिक हित में लग सके।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है पुस्तक में?
लक्ष्य है सच्ची समता और एकता। पुरुष और नारी को एक दूसरे का विरोधी या स्वामी दास नहीं, बल्कि एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह समझना, जो मिलकर ही जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैत्रीपूर्ण संबंध हो, आपसी सम्मान हो, सहयोग हो,
और जो सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे दहेज वगैरह,
हाँ, उनका अंत हो। दहेज, शादी में फिजूल खर्ची, इन सब का अंत हो। जिम्मेदारियां बराबर बटें। पुस्तक में स्वीडन का उदाहरण भी दिया है, जहां पुरुष भी बच्चों की परवरिश में बराबर हिस्सा लेते हैं। मूल बात यही है कि नारी का अवमूल्यन बंद होना चाहिए।
ये वाकई एक बहुत ही समग्र बदलाव का आह्वान है। ये सिर्फ बाहरी सुधारों की बात नहीं, बल्कि सोच और मूल्यों को बदलने की बात है।
बिल्कुल सही कहा आपने। पूज्य गुरुदेव का आग्रह यही है कि नारी को उसकी उपयोगिता या उसकी सीमाओं से मत देखिए, बल्कि उसकी जो अंतर्निहित दिव्यता है, उसकी जो असीम क्षमता है, उसे पहचानिए। यही आने वाले युग की जरूरत है, जहां नारी अपनी केंद्रीय भूमिका निभा सकेगी।
ये चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि ठीक है, शिक्षा मिल गई, आर्थिक आज़ादी भी शायद मिल जाए, लेकिन फिर भी वो कौन सी छोटी छोटी मान्यताएं हैं जो हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में, हमारी अपेक्षाओं में कहीं ना कहीं छिपी रह जाती हैं। और पूज्य गुरुदेव ने जिस जागरण की कल्पना की थी, उसमें व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने के लिए हमें अपनी सोच में और कहाँ कहाँ बदलाव लाने की जरूरत है, ये एक विचारणीय प्रश्न।